शान भावुक हो गया था, पर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और नर्स को देखकर बोला, निया मेरी ही भाभी है और ये बच्ची मेरी भतीजी, तो क्या आप उसे अनाथालय चूनने की जगह मुझे दे सकती है? ये मेरे भाई की आखिरी निशानी है, अगर आप उन्हें मुझे देंगी तो आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। शान की आंखों में नमी थी और चेहरे पर दर्द, जो उसकी सच्चाई का सबूत था। नर्स ने कुछ देर सोचा, फिर दूसरी नर्स को देखा तो उसने गंभीरता से कहा, लड़का सच्चा लग रहा है, फिर अनाथालय में जाने इस फूलसी बच्ची को कैसे रखा जाए? इससे अच्छा तो इसको इसके चाचा को सौंप दे, बच्ची को परिवार भी मिल जाएगा और अच्छा भविष्य भी। फिर हमारे सर से भी ये जिम्मेदारी हट जाएगी कि हमने बच्ची को सही हाथों में सौंपा है। उस नर्स की बात से पहली नर्स ने सहमति जताई और शान को देखकर सख्त भाव से बोली, तुम पर विश्वास करके बच्ची तुम्हें दे रही हूँ, कुछ गलत मत करना उसके साथ। शान ने सर हिला दिया और बच्ची को लेने के लिए अपनी कांपती हथेली आगे बढ़ा दी। नर्स ने ध्यान से उस बच्ची को शान की बाहों में थमा दिया। शान की आंखों से आंसू छलक आए और उसने बड़े ही प्यार और आत्मीयता से उस बच्ची के माथे को चूमते हुए खुद से ही कहा, मैंने आपकी बच्ची को बचा लिया भाई, मैंने आपसे किया वादा आज पूरा किया और अब मैं इसका बाप बनकर इसकी परवरिश करूंगा, इसको दुनिया की हर खुशी दूंगा, बिल्कुल वैसी जिंदगी दूंगा जैसी जिंदगी आप देना चाहते थे अपने बच्चे को। आज तक आप बाप की तरह मेरा ख्याल रखते आए हैं, पर अब मैं आपके बच्चे का बाप बनूंगा और उस पर कभी उसकी माँ की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा, वरना वो मतलबी औरत अपने फायदे के लिए इस मासूम बच्ची का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगी। अब से ये मेरी बेटी है, अंश मल्होत्रा का अंश, अंशिका मल्होत्रा, और मैं इसे बिल्कुल आपके जैसा बनाऊंगा। शान की बातें सुनकर नर्स का रहा सहा शक भी दूर हो गया। शान ने दोनों को थैंक यू कहा और अंशिका को अपने सीने से लगाए आगे बढ़ा कि भूख से तड़पते हुए वो बच्ची किलकारियां मारकर रोने लगी, क्योंकि जिस माँ ने उसके जन्म के बाद उसका चेहरा तक नहीं देखा, वो उसकी भूख शांत करने के लिए उसको दूध कैसे पिला देती। शान अंशु को चुप करवाने की कोशिश करने लगा और पीछे खड़ी दोनों नर्स उसको बच्चे की इतनी फिक्र करते देखकर मुस्कुराकर वहां से अंदर चली गईं। शान अतीत की यादों से बाहर आया, एक बार फिर उसकी आंखें नम थी। कुछ पल वहां गहरी खामोशी छा गई, हर कोई आंखों में नमी लिए उसे ही देख रहा था। शान ने कुछ सेकंड बाद फिर से कहना शुरू किया, हॉस्पिटल के बाहर ही मुझे छाया मिली और अंशु को संभालने में उसने मेरी मदद की। मुझे अंशु का ध्यान रखने के लिए किसी की जरूरत थी और छाया को सर छुपाने के लिए छत। अंशु मुझसे तब चुप नहीं हो रही थी, पर छाया ने उसको बहुत आसानी से शांत करवा दिया, तो मैं उसे अपने साथ ले आया। भाई को गए हुए 8 महीने ही हुए थे। अगर मैं आप सबको ये सब बताता तो आप मुझसे सवाल करते जिनके जवाब देने की स्थिति में नहीं था मैं, इसलिए मैंने सबको यही बताया कि अंशु मेरी बेटी है। और जब आप सबने उसकी माँ के बारे में पूछा तो मैं उस औरत का नाम नहीं ले सका जिसने अंशु को जन्म तो दिया पर उसकी माँ नहीं बन सकी। उसने अपनी ही बेटी को मरने के लिए बेसहारा छोड़ दिया। मैं उस औरत से अंशु का कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता था और अब भी मैं यही कहूंगा कि भले अंशु की रगों में खून भाई का हो, पर वो मेरी बेटी है। उसको जन्म देने वाली माँ उसी दिन मर गई जिस दिन उसने अपनी नवजात बच्ची का चेहरा तक देखने से मना कर दिया और उसको छोड़कर चली गई। अगर कोई अंशु की माँ कहलाने के काबिल है तो वो आरवी है। जैसे ही शान ने ये कहा, पहले तो सब चौंक गए, फिर मुस्कुरा उठे। वही आरवी नम आंखों से उसको देखने लगी। शान ने आगे बात जारी रखी, जैसे मुझसे अंशु का खून का रिश्ता नहीं, फिर भी मैंने उसको बाप के तरह पाला है और उसका डैड हूँ, वैसे ही भले ही आरवी ने उसको जन्म नहीं दिया, पर उसने उसको माँ का प्यार दिया है, वही प्यार जो उसकी सगी माँ उसे नहीं दे सकी। अंशु हमारी बेटी है और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इस सच्चाई को स्वीकार कर लें और कभी अंशु के सामने इन बातों का जिक्र ना करें, क्योंकि अगर आगे चलकर कभी उसको पता चला कि हम उसके रियल पेरेंट्स नहीं हैं तो वो सवाल करेगी कि उसके सगे माता पिता कहाँ हैं। भाई के लिए तो सच बता देंगे, पर अगर उसकी माँ का असली चेहरा उसके सामने आया तो मेरी बच्ची टूट जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो औरत अंशु की जिंदगी में कभी आए और आगे चलकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसलिए ये राज यहीं दफन हो जाना चाहिए। अब मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी है और उम्मीद करता हूँ कि ये बात यहाँ से बाहर कभी नहीं जाएगी। शान ने अपनी बात पूरी की और उठकर सीढ़ियों की तरह बढ़ गया। आरवीना आंखों से उसको देखती ही रह गई। बाकी सब भी स्तब्ध से बैठे थे और सोच रहे थे कि क्या कोई औरत, कोई माँ इतनी निष्ठुर भी हो सकती है। नारी को तो ममता और दया की मूरत कहा जाता है, फिर वो कैसी माँ रही होगी जिसने अपनी नवजात बच्ची को मरने के लिए बेसहारा छोड़ दिया, और ऐसा करते हुए उसके जमीर ने धिक्कारा नहीं, उसका दिल नहीं कचोटा उसे। शान अभी कुछ आगे बढ़ा ही था कि उसके कानों में सुयश जी की आवाज पड़ी, हम जानना चाहते हैं कि अंशु को जन्म देने वाली औरत कौन है। शान ने पलटकर उन्हें देखा और बिना किसी भाव के बोला, अब वो औरत ठाकुर खानदान की बहू है और उसने जो भाई के साथ किया वही अर्जुन के साथ भी किया। जैसे अपने स्वार्थ के लिए उसने भाई को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उनका इस्तेमाल किया और काम खत्म होते ही उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंका, उनके बच्चे को मारने को तैयार हो गई, वही सब उसने अर्जुन के साथ भी किया। उसको अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा कर उससे शादी की। ठाकुर खानदान की बहू बनकर वो सब हासिल किया जिसके सपने उसने देखे थे, और जब मैंने उन्हें बर्बाद करने की शुरुआत की तो अर्जुन को छोड़ने और उसके बच्चे को मारने की प्लानिंग भी कर ली। पर वो उसकी हकीकत जानता है, अपने बच्चे के लिए उसके साथ है। उसके बाद वो उससे अलग हो जाएगा और फिर उस औरत को सजा मिलेगी उस धोखे की जो उसने भाई को दिया। शान की आंखों में खून उतर आया था। हर कोई उसका गुस्सा समझ रहा था, और अब आरवी को भी समझ आ गया था कि क्यों अर्जुन का उसकी वाइफ के साथ इतना अजीब रिश्ता है। मन ही मन खुद की और अपने भाई की किस्मत में कंपेयर करने लगी थी वो। कितना अजीब खेस था किस्मत का कि दोनों भाई बहन में से कोई भी अपनी शादी से खुश नहीं था। एक ने प्यार किया तो गलत इंसान से और अब दुख काट रहा है। दूसरी ने प्यार तो सही इंसान से किया पर नफरत और गुस्से की लपटों में उसका प्यार झुलस कर रह गया। अर्जुन ने अपने प्यार को पाकर भी खो दिया, और वही हाल तो उसका भी है। वो दोनों भी साथ हैं पर बेहद दूर हैं एक दूसरे से, और कभी साथ हो भी नहीं सकते। तो शान और वो भी साथ हैं पर दूरियां इतनी हैं कि चाहकर भी उन्हें कम या खत्म नहीं किया जा सकता। यही सब सोचते हुए आरवी ने लबों पर व्यंग्य भरी मुस्कान फैल गई। बाकी सब खुद को संभालने की जद्दोजहद में लग गए। वही शान अपने रूम में चला आया और अंशु के पास बैठ गया। आज अतीत के एक बहुत बड़े राज पर से पर्दा उठ गया था। शान का मन हल्का हो गया था, तो बाकी सब ये जानकर खुश थे कि अंशु अंश की आखिरी निशानी है, उसकी बेटी है। मतलब अपनी बेटी के रूप में वो खुद उन सब के साथ है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। अंशु के साथ हुए हादसे को लगभग 2 महीने बीत चुके थे। अंशु के सर का जख्म ठीक हो चुका था, और ये सब आरवी के प्यार और देखभाल का ही नतीजा था। इन 2 महीनों में वो घर से बाहर सिर्फ तब गई थी जब अंशु को हॉस्पिटल लेकर जाना होता था, वरना सारा सारा दिन वो उसके साथ रहती।
पहले तो अंशु बस आराम करती थी, तो आरवी उसको कहानियां सुनाकर उसका मन बहलाती, कभी बाहर गार्डन में घुमाने ले जाती, सबके साथ बैठकर हंसी मजाक होता। फिर जब सर की पट्टी खुल गई और डॉक्टर की इजाज़त मिल गई तो घर में ही उसकी पढ़ाई करवा देती। अंशु के खाने पीने, दवाई सबका ध्यान खुद रखती थी। उसकी सारी जिम्मेदारी उसने उठाई हुई थी। बीच बीच में रेहान, रश्मि, अनुपमा जी, सृष्टि आते थे उसको देखने। अर्जुन भी कई बार आया था और उसके लिए खिलौने और चॉकलेट भी लेकर आता था। घर में सबसे उसकी ठीक से बात होती थी। बस शान अब भी उसको बात बात पर ताना मारता रहता था, जिसका अर्जुन कभी बुरा नहीं मानता था। अंशु अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी, पर अब भी घर पर ही रहती थी। सर पर कान तक बाल भी उग गए थे, और एक बार फिर उसके घुंघरेले बालों को आरवी खुशी खुशी संवारती थी। अंशु तो बड़ी खुश रहती थी, सब उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते। आरवी सारा वक्त उसके साथ रहती, सुभाष जी के साथ खेलती, सबको खूब परेशान करती। शान भी जल्दी आ जाता और फिर उसके साथ वक्त बिताता। वो उस आंगन की चहकती चिड़िया थी जिससे उनके घर की रौनक थी। सबका प्यार उसके लिए बढ़ गया था, जिसकी 2 वजह थी। पहला कि वो मौत के मुंह से लौट कर आई थी, और दूसरी वजह थी अंशु उस घर के बड़े बेटे की आखिरी निशानी थी, तो सब उसका और ज्यादा ख्याल रखते थे। पहले किसी ने गौर नहीं किया था, पर अब उन्हें एहसास हो रहा था कि अंशिका का नाम, उसकी आदतें, हरकतें, शरारती नेचर सब अंश से मिलता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अपने डैड की कार्बन कॉपी थी, और उनके सभी गुण, अवगुण और नेचर को खुद में समाहित किए हुए थी। अंश की झलक दिखती थी उसमें, और कहीं ना कहीं उसके रूप में अब सुयश्चय हर पिताजी अपने बेटे को देखते थे। हालात देखते हुए रेहान और रश्मि की शादी अगले महीने के लिए पोस्टपोन हो गई थी। वहीं अब निया की डिलीवरी में अब बस 2 ही महीने बचे थे। अर्जुन और अमरजीत जी के अलावा सृष्टि को भी अर्जुन के बच्चे का बेसब्री से इंतजार था। अर्जुन और आरवी की बात होती थी, पर इस वक्त दोनों का ध्यान बाकी बातों से हटा हुआ था। सृष्टि और अर्जुन की दोस्ती और गहरी हो चुकी थी। आरवी और शान के बीच जरूरत भर ही बातचीत होती थी, वो भी ज्यादातर अंशु के बारे में। शान उससे ज्यादा कुछ कहता नहीं था, और आरवी ने तो ऑफिस वाले हादसे के बाद से उससे बोलना ही छोड़ दिया था। अर्जुन ने भी न्यू बिजनेस में हाथ आजमाने का फैसला किया था, और अब उसकी तैयारी में जुटा था। सब फिर से शुरू करना था, तो 1-2 दिन का काम तो था नहीं, काफी कुछ देखना, सोचना, समझना था, और अभी वो इसी में लगा था। अब सबकी जिंदगी स्थिर थी, शांति थी, पर शायद ये तूफान से आने के पहले की शांति थी, और ये तूफान बहुतों की जिंदगी को प्रभावित करने वाला था। टू बी कंटिन्यूड।